بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. لله ما في السماوات وما في الأرض، الله ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. علامہ ابن مشتہر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی آدمی سب سے افضل حمد، درود اور دعا پڑھنا چاہتا ہو تو وہ یہ پڑھے. تو شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود میں نقل کیا، اللہم لک الحمد کما انت اہلو، وصل علی محمد کما انت اہلو، وفعل بنا کما انت اہلو، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اے اللہ، آپ کے لیے حمد ہے، تعریف ہے جو آپ کی شان کے مناسب ہے. بس آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے جو آپ کی شان کے مناسب ہو، اور ہمارے ساتھ بھی وہ معاملہ کیجئے جو آپ کے شایان شان ہو. بے شک اے اللہ، آپ ہی اس کے مستحق ہیں کہ آپ سے ڈرا جائے اور آپ مغفرت فرمانے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی بہت بڑے ہیں، اللہ کے خزانے بہت زیادہ ہیں، ہمارے تمام مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے. اللہ کیسے خالق ہیں، کیسے رازق ہیں، کیسے رزق پہنچانے والے ہیں، کیسے سمیع ہیں، کیسے بصیر ہیں. اللہ کی بڑائی آدمی صبح شام سوچے اور اللہ کی طرف رجوع ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں. اللہ کے نام اور ان کے ناموں کا ترجمہ اور اس سے بات شروع ہوگی یہ منتخب احادیث میں کلمہ طیبہ کے باب میں. حدیث شریف ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جس نے ان کو خوب اچھی طرح یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی مالک و معبود نہیں، الرحمن بے حد رحم کرنے والا، الرحیم نہایت مہربان، الملک حقیقی بادشاہ، القدوس ہر عیب سے پاک، السلام ہر آفت سے سلامت رکھنے والا، المؤمن امن و ایمان عطا فرمانے والا، المہیمن پوری نگہبانی فرمانے والا، العزیز سب پر غالب، الجبار خرابی کا درست کرنے والا، المتکبر بہت بڑائی والا، الخالق پیدا فرمانے والا، الباری ٹھیک ٹھیک بنانے والا، المصور صورت بنانے والا، الغفار گناہوں کا بہت زیادہ بخشنے والا، القہار سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا، الوہاب سب کچھ عطا کرنے والا، الرزاق بہت بڑا روزی دینے والا، الفتاح سب کے لیے رحمت کے دروازے کھولنے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا، القابض تنگی کرنے والا، الباسط راخی کرنے والا، الخافض پست کرنے والا، الرافع بلند کرنے والا، المعز عزت دینے والا، المذل ذلت دینے والا، السمیع سب کچھ سننے والا، البصیر سب کچھ دیکھنے والا، الحکم اٹل فیصلے والا، العدل سراپا عدل و انصاف، اللطیف بھیدوں اور رازوں کا جاننے والا، الخبیر ہر بات سے باخبر، الحلیم نہایت بردبار، العظیم بڑی عظمت والا، الغفور بہت بخشنے والا، الشکور قدردان تھوڑے پر بہت دینے والا، العلی بلند مرتبہ والا، الکبیر بہت بڑا، الحفیظ حفاظت کرنے والا، المقیت سب کو زندگی کا سامان عطا کرنے والا، الحسیب سب کے لیے کافی ہو جانے والا، الجلیل بڑی بزرگی والا، الکریم بغیر مانگے عطا فرمانے والا، الرقیب نگران، المجیب قبول فرمانے والا، الواسع وسعت رکھنے والا، الحکیم بڑی حکمتوں والا، الودود اپنے بندوں کو چاہنے والا، اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت کرنے والا، المجید عزت اور شرافت والا، الباعث زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے والا، الشہید ایسا حاضر جو سب کچھ دیکھتا ہے اور جانتا ہے، الحق اپنی ساری صفات کے ساتھ موجود، الوکیل کام بنانے والا، القوی بڑی طاقت والا، المتین بہت مضبوط، الولی سرپرست اور مددگار، الحمید تعریف کا مستحق، المحصی سب مخلوقات کے بارے میں پوری معلومات رکھنے والا، المبدی پہلی بار پیدا کرنے والا، المعید دوبارہ پیدا کرنے والا، المحیی زندگی بخشنے والا، المومیت موت دینے والا، الحی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا، القیوم سب کو قائم رکھنے اور سنبھالنے والا، الواجد سب کچھ اپنے پاس رکھنے والا، ہر چیز اس کے خزانے میں ہے، الماجد بڑائی والا، الواحد ایک، الاحد اکیلا، الصمد سب سے بے نیاز، سب اس کے محتاج، القادر بہت زیادہ قدرت والا، المقتدر سب پر کامل اقتدار رکھنے والا، المقدم آگے کر دینے والا، المؤخر پیچھے کر دینے والا، الاول سب سے پہلے، الاخر سب کے بعد، الظاہر بالکل ظاہر یعنی دلائل کے اعتبار سے اس کا وجود بالکل ظاہر ہے، الباطن نگاہوں سے چھپا ہوا، الوالی ہر چیز کا ذمہ دار، المتعالی مخلوق کی صفات سے برتر، البر بڑا محسن، التواب توبہ کی توفیق دینے والا، المنتقم مجرموں سے بدلہ لینے والا، العفو بہت معافی دینے والا، الرؤوف بہت شفقت رکھنے والا، مالک الملک سارے جہاں کا مالک، ذو الجلال والاکرام عظمت اور جلال اور انعام اور اکرام والا، المقصد حقدار کا حق ادا کرنے والا، الجامع ساری مخلوق کو قیامت کے دن ایک جگہ جمع کرنے والا، الغنی خود بے نیاز جس کو کسی سے کوئی حاجت نہیں، المغنی اپنی عطا کے ذریعے بندوں کو بے نیاز کر دینے والا، المانع روک دینے والا، ابار ضرر پہنچانے والا، النافع نفع پہنچانے والا، النور سراپا نور اور نور بخشنے والا، الہادی سیدھا راستہ دکھانے والا، البدیع بغیر کسی نمونے کے بنانے والا، الباقی ہمیشہ رہنے والا، الوارث سب کے فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والا، الرشید صاحب رشد اور حکمت جس کا ہر فیصلہ درست ہے، الصبور بہت برداشت کرنے والا کہ بندوں کی بڑی سے بڑی نافرمانیاں دیکھتا ہے اور فوراً عذاب بھیج کر پکڑ نہیں کرتا۔ اللہ پاک کے 99 نام ہیں، اللہ پاک ان کو یاد کرنے کی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی دعا مانگیں اللہ کے پاک نام پڑھ کر جتنے یاد ہوں پھر اللہ سے دعا مانگیں، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام، تھوڑے تھوڑے نام یاد کیے جائیں چند دنوں میں سارے یاد ہو جائیں، اسماء الحسنی۔ صبح و شام کی تسبیحات کے بارے میں ترغیب دی جاتی ہے، بڑے بڑے کام آسان کرنے کا نسخہ سورہ توبہ کی آخر کی آیت کا ٹکڑا پڑھا جائے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، صبح شام 7 مرتبہ اس کو پڑھا جائے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ استغفار کی تسبیح پڑھی جائے اور اس کے ساتھ استغفار چلتے پھرتے جو ہو جائے، اور کچھ استغفار ہیں وہ دو دو تین تین مرتبہ نمازوں کے بعد صبح میں شام میں پڑھے جائیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ حدیث شریف میں آئے ہیں کہ جو پڑھے گا تو اس کے صغیرہ گناہ کتنی غلطیاں ہوتی ہیں وہ معاف ہو جائیں گی۔ اللہم اجرنی من النار، یہ 7 ٹائمز صبح شام پڑھنا چاہیے، اللہ جہنم سے پناہ دے ہمیں بچا لے، اللہم اجرنی من النار۔ فجر کے بعد اور عصر کے بعد نماز کے بعد دعا سے پہلے 10 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ صبح اور شام آفات اور بری چیزوں سے بچنے کے لیے حدیث شریف میں دعا بتائی گئی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جب ہم اللہ پاک کو یاد کریں گے اللہ پاک ہمیں یاد فرمائیں گے۔ ذکر کے بہت سارے فائدے، پورے فضائل ذکر پر کتابیں لکھی گئیں، درجنوں احادیث فضائل بیانات۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی فضیلت نہیں ہوتی ذکر کی، صرف یہ ہوتی کہ تم ہم کو یاد کرو ہم تم کو یاد کریں گے، تو बंदे उसी पर मर मिटते हैं कि अल्लाह पाक हमको याद करेंगे, हम अल्लाह को याद करेंगे। जिस जगह अल्लाह का जिक्र होता है फरिश्ते जमा हो जाते हैं। जो आदमी दीन सीखने जाए फरिश्ते उसके लिए पर बिछाते हैं। इल्म दीन का एक बाब सीख लेना ऐसा है कि 1000 रिकात नफिल पढ़ने का सवाब। जिस जगह अल्लाह का जिक्र हो वो आसमान में सितारों की तरह चमकते हैं। जो लोग अल्लाह के वास्ते एक जगह बैठे और वापस गए और कोई अल्लाह के वास्ते दीन की बात सुन रहे हैं, ऐसे लोग क़यामत में अर्श के साए में होंगे, नूर के मिंबरों पर होंगे। बड़े बड़े फजाइल हैं। आदमी ध्यान से तवज्जो से बावजू क़िबला रू दुआ करके ध्यान से बैठे, कोई अच्छी बात सुन ली तो उसकी तकरार उसको दोहराए अपने पास पड़ोस रिश्तेदारों को, हमने ऐसी कोई बात अच्छी सुनी, या कहीं लिख लिया जाए उसको, कभी कभी मुजाकरा किया जाए। जो इल्म हमें चाहिए वो आखरत की पहचान, अल्लाह की पहचान, तौबा करा के हयात तय्यबा इस दुनिया में और शैतान और नफ्स से बचा दे और आखरत में बड़े बड़े दर्जात मिल जाए, अल्लाह पाक राज़ी हो जाए, ये इल्म है। बाकी साइंस जोग्राफिया माशरती उलूम सोशल स्टडीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ सकता है आदमी, लेकिन इल्म में वो चीज़ पढ़े कि मेरे नफ्स का क्या इलाज है, अल्लाह पाक मुझसे कैसे राज़ी होंगे, आज अल्लाह पाक मुझसे क्या चाहते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी को किस तरह से साफ़ करूँ, ये इल्म है। बाकी सारे उसके आलात हैं, कोई अरबी ग्रामर पढ़ रहा है, कोई सर्फ नहव पढ़ रहा है, वो तो आलात है, वहाँ से होकर यहाँ पहुँचेगा तो ये इल्म उसको मिलेगा। तो इसलिए चूंकि वक्त कम है, आदमी को चाहिए कि हकीकी इल्म जो चीज़ मतलूब है उसको जल्दी से हासिल करे। फितनों के ज़माने में, जब आखिरी ज़माने में ऐसे ऐसे फितने होंगे, तो दीन पर पूरा अमल करना ऐसा होगा जैसे हाथ में अंगारा ले लिया। अरे ऐसा कैसे, कोई भी अमल नहीं करता ऐसा। मुफ्ती साहब बताते हैं कि ऐसा अमल करना कुरान शरीफ में है, हदीस शरीफ में है। तो आखिरी ज़माने में दीन पे अमल करना ऐसा हो जाएगा जैसे हाथ में अंगारा ले लिया, बर्निंग कोल लेके चल रहा है, या वॉकिंग ऑन शेल्स ऐसे चल रहा है कि बस अभी गिर जाएगा, या दरख्तों के झुंड में से जा रहा है, दोनों तरफ कांटे लगे हुए हैं और उसके कपड़े कांटों में लग जाते हैं, बचाता हुआ अपने कपड़ों किसी तरह कभी इधर झुकता कभी उधर झुकता चला जा रहा है। तो आखिरी ज़माने पे दीन पर अमल करना ऐसा हो जाएगा। अब उसमें जो साबित कदम रहेगा और पूरे दीन पे अमल कर लेगा, उसको 100 शहीदों का, इन्हें एक सुन्नत पे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा और 50 सहाबा का सवाब मिलेगा। जो आदमी आखिरी ज़माने में पूरे दीन पे अमल कर लेगा उसको 50 सहाबा का सवाब मिलेगा। यानी सहाबा के दर्जात को तो नहीं पहुँचेगा, लेकिन ये तरगीब देने के लिए बताया गया। तो उलमा इकराम कहते हैं सवाब की लूट है, आजकल लूट है, आदमी दौड़े मुझको चाहिए। अल्लाह पाक हमें आपको सबको बेहतरीन इल्म सालेह अता फरमाए, अमल सालेह की तौफीक दे और अल्लाह पाक हमारी सारी मुश्किलात को परेशानियों को हल फरमाए। कुछ तरगीब के मजामीन पढ़कर आज का बहुत अहम सबक है जो सब लोग याद कर लें, और इंशाल्लाह आखिर में मालूम होगा कि ये बहुत काम का सबक होगा, इसलिए जिसको भी सुना सकें या जिनको तरगीब दे सकें, तो आज का सबक बहुत ही अहम बात पर है। अल्लाहु लक अलहम्दु लक शुक्र। ये किताब है नेकियों के पहाड़ मिनटों में, नेकियों के पहाड़ मिनटों में। अगर कोई आदमी सिर्फ एक मर्तबा ये कलिमात कह ले, अल्लाहुम्मा ग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात, इस शरीफ में आया कि जो आदमी मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए बख्शिश की दुआ मांगेगा, अल्लाह ताला उसके बदले दुनिया में जितने मोमिन मर्द हैं और मोमिना औरतें हैं उनकी तादाद के बराबर सवाब लिख देंगे। अल्लाहुम्मा ग़फिर लि वलिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ये अल्लाह तमाम मोमिनीन और मोमिनात को, ईमान वाले मर्दों को औरतों को बख्श दीजिए, तमाम मुसलमान मर्दों औरतों को बख्श दीजिए। तो दुनिया में 1 अरब से ज़्यादा मुसलमान, उनकी तादाद के बराबर सवाब मिलेगा। शेख ने लिखा कि ये एक रोज़ाना 1 अरब का सवाब, आदमी देखे कि हफ्ते में कितने और महीने में कितने और साल में कितने, यानी नेकियों को शुमार करना मुमकिन नहीं है, आदमी की ज़बान ख़जाना है। और जो आदमी दिन में 25 मरतबा ये 27 मरतबा ये दुआ कर लेगा तो मुस्तजाबुद दावात हो जाएगा, कि उसकी दूसरी दुआएं भी कबूल होने लगेंगी। आदमी मखलूक के लिए इतनी फिक्र करे, बार बार अल्लाह से मांगे, अल्लाह सबको बख्श दीजिए, अल्लाह हिदायत को आम कर दीजिए, चलते फिरते अल्लाह से मांगा करे, चलते फिरते मांगा करे। जन्नत के हुसूल के लिए अल्लाह पाक तो तरगीब दे रहे हैं कि दौड़ो अपने रब की माफ़ी की तरफ, अल्लाह की माफ़ी की तरफ दौड़ो और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई फैलाई आसमान और जमीन के अर्ज और फैलाव के बराबर है। अल्लाह पाक बुला रहे हैं, वल्लाहु यदउ इला दारि सलाम, और बता रहे हैं इतनी बड़ी जन्नत है कि उसकी लंबाई चौड़ाई जमीन आसमान की लंबाई चौड़ाई से ज्यादा। मगर इंसान जन्नत के बजाय कहीं और दौड़ रहा है, तो बस आदमी की अपनी नादानी है, आदमी की अपनी नादानी है। शेख ने लिखा कि बात यह है कि हिर्स और शहवत ने चारों तरफ से हमें घेर रखा है और तबीयत आराम पसंद है, तो इस वजह से दीन की चीज में रगबत नहीं होती। तो इसके लिए बार बार मुजाकरा किया जाता है कि वो दीन का शौक पैदा हो, दीन का शौक पैदा हो। एक एक तस्बीह पर क्या मिलेगा, एक एक दरूद शरीफ पर क्या मिलेगा। जिस आदमी के पास सदका देने के लिए कोई चीज ना हो, वो एक दरूद शरीफ पढ़ा करे। इस दरूद शरीफ में है कि माल में भी बरकत होगी, जिस चीज के लिए आदमी पूरी जिंदगी परेशान है तो उसमें बरकत होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्ली अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। जुमे के खुतबे में भी पढ़ा जाता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्ली अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। कुछ दुआ, दरूद शरीफ, इस्तिगफार, कुरान शरीफ की तिलावत, तस्बीहात, सुबह शाम कुछ नेकियों में आदमी लगा रहे, नेकियों में लगा रहे। अल्लाह, सुबह शाम के औकात को इबादत, नवाफिल, जिक्र, अस्कार में मसरूफ रहना चाहिए। दिन का कोई वक्त अमल खैर और जिक्र तिलावत के शगल से खाली ना हो, उससे असल जिंदगी का लुत्फ हासिल होता है और अल्लाह ताला की तरफ हमेशा तवज्जो कायम रहती है। इमाम हुज्जतुल इस्लाम यानी इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया कि तुम्हारे लिए जरूरी है कि अपने औकात को मुख्तलिफ मशागिल के दरमियान तकसीम कर लो, यानी हर काम का शेड्यूल बना लो, इस वक्त ये करेंगे, इस वक्त ये करेंगे। और इबादत और काम काज और मईशत यानी अपने जॉब और घर के काम में तरतीब कायम कर लो। और अगर तुम जिंदगी इस तरह गुजारोगे कि जो काम जिस वक्त भी किया जाए उसको उस वक्त कर लिया जाए और वक्त का तायुन शेड्यूल नहीं बनाओगे, तो तुम्हारे अक्सर औकात बर्बाद हो जाएंगे। शेख फरमाते हैं यही औकात टाइम तुम्हारी उम्र है, और तुम्हारी उम्र तुम्हारी सारी पूंजी है, और तुम्हारा हर सांस बेशकीमत गौहर है, यानी हर सांस एक हीरा, जवाहिर, डायमंड है, जो खो गया तो बेकार गया, और ये सांस जाने के बाद वापस नहीं आ सकता। जब एक दिन गुजर जाता है तो असल में आदमी की उम्र का एक हिस्सा खत्म हो गया, तो एक हिस्सा इतना परसेंट उसका वफात हो गया, आपका इतने परसेंट डेथ हो गई, रोजाना खत्म होते 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 एक दिन पूरा खत्म हो गया, फरिश्ता आके ले गया। रोजाना जब सूरज निकलता है उस वक्त आदमी पूरे दिन का मुजाकरा करे, इस वक्त जो है क्या हो रहा है, आज मैं कितने नेक काम कर सकता हूँ। शाम को इस्तिगफार करे, नेकियों की दौड़ में रहे, नेकियों की दौड़ में रहे। फजाइल उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के फजाइल में से है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम की पुश्त पर उसके ऊपर पुल सरात कायम कर दी जाएगी, कयामत में पुल सरात जहन्नम के ऊपर बिछाई जाएगी और सारे लोगों को उसके ऊपर से गुजरना होगा, और मैं सब नबियों से पहले अपनी उम्मत को लेकर गुजरूंगा, और उस रोज यानी कयामत के रोज अम्बिया के अलावा कोई और बात ना करता होगा, अम्बिया के अलावा कोई और कलाम ना करता होगा, और नबियों का कलाम भी उस रोज सिर्फ यो होगा, अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम, ऐ अल्लाह सलामत रखिए, ऐ अल्लाह सलामत रखिए। ऐसा खतरनाक दिन होगा कि अम्बिया अलैहिस्सलाम भी बस ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह बचा लीजिए। और जहन्नम में दरख्त के कांटों की तरह लोहे के बड़े बड़े कांटे होंगे, जिनको अल्लाह ही जानता है, वो कांटे जहन्नम से निकलकर पुल सरात पर चलने वाले लोगों को यानी बुरे लोगों को उनके आमाल की वजह से उचक लेंगे और जहन्नम में फेंक देंगे, बाज उनमें से हलाक हो जाएंगे, अल्लाह बचाए, और हमेशा उसमें रहेंगे जो कि काफिर होंगे, बाज टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ेंगे फिर नजात पाएंगे बाद में जो गुनहगार मुसलमान होंगे। अल्लाह लैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि ईसा अलैहि सलाम ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कयामत के रोज आमाल की तराजू में सब लोगों से ज्यादा भारी होगी, کیونکہ ان کی زبانیں ایک ایسے کلمے کے ساتھ مانوس ہیں جو ان سے پہلوں پر بھاری ہو گیا تھا، مشکل ہو گیا تھا، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور امت میں کتنے ہی مشائخ اور ان کے شاگرد سینکڑوں برس سے جو گزرے، ان کے ہیں اذکار تسبیحات میں لا الہ الا اللہ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. اور لاکھوں کروڑوں ایسے افراد ہوں گے کہ انہوں نے اپنی عمر میں کروڑوں مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا، صبح شام ہزاروں ہزار پڑھتے رہتے ہیں، سوا لاکھ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں، ایک سانس بھی جانے نہیں دیتے، خالی ایک سانس بھی جانے نہیں دیتے، ایک تسبیح صبح شام کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی پڑھ لینی چاہیے. جو آدمی پڑھے گا تو اس کو اس قیامت کے دن نور کی طرح چمکتا ہوگا، نور کی طرح چمکتا ہوگا. کعب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، تورات میں نے پچھلی کتابوں میں لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بزرگ بندے ہیں، نہ ان کے اخلاق سخت ہیں، نہ مزاج سخت ہے، نہ وہ بازاروں میں چلانے والے ہیں، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں بلکہ معاف کر دیتے ہیں اور بخش دیتے ہیں. مکہ مکرمہ ان کی پیدائش کی جگہ ہے، مدینہ شریف ان کی ہجرت کی جگہ ہے، ملک شام میں ان کے مجاہد ہوں گے. ان کی امت کے آدمی اللہ کی بہت زیادہ حمد تعریف کرنے والے ہوں گے، خوشی میں اور مصیبت میں اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں گے. ہر منزل پر جہاں رکیں گے اللہ کی حمد بیان کریں گے، ہر بلندی پر جب چڑھیں گے تو اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور نماز کے اوقات پہچاننے کے لیے سورج کا دھیان رکھنے والے ہوں گے، جب نماز کا وقت آئے گا نماز ادا کریں گے، آدھی پنڈلی تک اپنا تہمت یعنی پاجامہ اوپر کر کے مرد باندھیں گے، اور نماز کے وقت اپنے ہاتھ پاؤں دھویا کریں گے یعنی وضو کریں گے، اور آسمان اور زمین کے درمیان کھڑے ہو کر ان کا مؤذن اذان دے گا. امت کی تعریف پہلی کتابوں میں ہو رہی ہے، ایک امت آئے گی اس کا آدمی اذان دیا کرے گا. اللہ راتوں کو اللہ کو یاد کریں گے اور ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی بھن بھناٹ کی طرح ذکر اللہ کے ساتھ نکلتی ہوگی. ایسی امت ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کی دھوم تھی، اس کی فضیلتیں بتائی جاتی تھیں کہ تو پچھلے انبیاء موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمیں دے دو یہ امت، وہ بتایا گیا کہ یہ آگے احمد کی امت. ہم نے درخواست نہیں دی تھی، کوئی اپلیکیشن کوئی کوالیفیکیشن نہیں تھی، اللہ پاک نے اس امت میں پیدا فرمایا، اللہ کا بہت بڑا احسان، یہاں تھوڑی سی نیکیوں پر بہت ثواب دینے کا وعدہ کیا. پہلے لوگ پانچ پانچ سو سال تک اللہ کے راستے میں ہیں، پانچ سو سال تک کوئی بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں، اس امت کو چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے کہ تم تھوڑا تھوڑا یہ کرو گے بڑے بڑے ثواب دو، بڑے بڑے ثواب دو. یہ آدمی شوق سے سیکھے اور دوڑے نیک اعمال میں. طالب علم کے آداب اور جو پہلے زمانے میں لوگوں نے علم سیکھنے کے لیے کوشش کی ہے اس کے کچھ واقعات پڑھا جائیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مدت تک رہے اور ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا، سال ہر سال تک علم سیکھنے کے لیے رہے اور ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ فجر کی نماز میں امام صاحب کے ساتھ شریک نہ رہے ہوں. ہر روز صبح صبح یعنی دوسرے محلے جہاں رہتے تھے جا کے امام صاحب کا صبح کی نماز سے ہی شامل ہو گئے. امام صاحب فجر کے بعد سے درس شروع فرما دیتے تھے، پہلے زمانے میں ایسا معمول ہوتا تھا، فجر کے بعد درس فرماتے ہیں. میں برسوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا سوائے بیماری کے، یعنی بیمار ہو گیا اگر تو، بیماری اگر نہ ہو تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن بھی ان سے جدا نہیں ہوتا تھا. عید کا بھی دن آیا صبح پہنچ گیا امام صاحب سے پڑھنے کو، حالانکہ ان دنوں میں ہر آدمی اپنے گھر میں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے مجلس علم کی شرکت کی، استاد کے پاس چلے گئے. حتیٰ کہ یہ کیا ہوا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پھر اس کی برکت سے کیا ہوا کہ وہ پورے مسلمانوں کی حکومت کے اندر وہ چیف جسٹس مقرر ہوئے. پوری اسلامی حکومت میں جو ایک ملک نہیں تھا، پچاسوں ملک تھے، کونٹی بر اعظم کے بر اعظم کہاں سے لے کے کہاں تک مسلمانوں کی حکومت تھی، اس پورے کے وہ چیف جسٹس مقرر ہوئے. ایسا علم حاصل ان کا ایک بیان نقل کیا گیا کہ ایک اور ان کو پڑھنے کا اور اتنا شوق تھا کہ کوئی چیز چھوٹ نہ جائے، کوئی میرے علم میں کوئی بات چھوٹ نہ جائے، آج کوئی ایسا سبق ہوگا جو رہ نہ جائے. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، ان کے کسی بچے کا انتقال ہو گیا، और क्या हुआ कि उन्होंने अब इंतज़ाम करूं या सबक में जाऊं, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को मुकर्रर किया कि पूरा इसका इंतज़ाम करो, कफन दफन का, हर चीज़ का, और जाके वो इमाम साहब के दर्स में शामिल हो गया। तो ऐसी कुर्बानी के साथ लोगों ने इल्म सीखा है कि कोई चीज़ छोड़ी नहीं, दीन की चीज़ कहीं पढ़ाई जाती है उसके शौक से लगे। असाबे सुफा का हाल ये था, कई कई दिन उनका फाका हो जाता, कहीं से कुछ मिल गया तो खा लिया, कुछ आ गया तोहफा मिल गया तो उन्होंने खा लिया। इस हालत में उन्होंने इल्म हासिल किया और तमाम दुनिया को सैराब किया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, इल्म हासिल नहीं हो सकता जब तक उसके रास्ते में फ़क्र व फाका की लज्जत चखी ना जाए। अपने उस्ताद रबिया की गुरबत और मुसीबत बयान की, फरमाया कि इमाम रबिया इतने गरीब हो गए थे कि उनको अपने घर की छत तक बेचनी पड़ी, और उनके खाना ये था कि मदीना मुनव्वरा में कूड़े पर से पड़ी हुई पुरानी सड़ी हुई किशमिश चुन चुन कर उनको साफ करके खा लिया। ऐसे इल्म हासिल। अल्लाह, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के एक साथी बयान करते हैं कि इमाम अहमद हजारबंद बुन बुन कर अपनी जरूरियात तालिब इल्मी के ज़माने में अपनी ज़रूरत पूरी किया करते, हजारबंद बनाया करते थे, जो बेल्ट होती है कपड़े की। किसी ने देना चाहा कुछ तो इनकार कर देते थे। जब यमन से चलने लगे तो नान भाई यानी रोटी वाले के कुछ पैसे बाकी रह गए थे और उनके पास रुपए नहीं थे, तो इमाम अहमद ने अपने पहनने के जूते उसको दे दिए। एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना है, अभी पैदल सफर है, वो जहाज का टिकट नहीं है, इमाम साहब ने अपने जूते उसको दे दिए कि भाई ये ले लो, पैसे ही नहीं हमारे, और नंगे पांव रवाना हुए, खाली पैर रवाना हुए ऐसा। और ऊंटों पर बोझ लादने और उतारने वाले मजदूरों में शामिल हो गए, जो मजदूरी मिलती उसी से रास्ते के खर्च का काम निकालते। ये इंडिया का किस्सा है। निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन बहुत बड़े बुजुर्ग दिल्ली में सब जानते हैं, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। निजामुद्दीन हजरत 5 साल के थे कि बाप का साया सर से उठ गया। वालदा ने, जो अपने वक्त की बहुत सालिहा और खुदा तर्स खातून थी, उनकी तालीम का इंतज़ाम किया। घर में अक्सर फाका रहता था, खाने पीने को नहीं होता। जिस रोज़ घर में खाने को नहीं होता तो वालदा फरमाती कि आज हम सब अल्लाह के मेहमान हैं, आज हम सब अल्लाह के मेहमान हैं, बच्चे समझ जाते। और ख्वाजा फरमाते हैं, ख्वाजा निज़ामुद्दीन, कि मुझे ये बात सुन के बड़ी खुशी होती, बात सुन के बड़ी खुशी होती कि आज खाना वाना कुछ नहीं है, आज हम अल्लाह के मेहमान। बच्चों भी ट्रेन हो गए। एक दिन कोई आदमी आकर तोहफे में को बहुत सारा खाना गल्ला जैसे होता है आटा चावल दे गया। चंद रोज उससे रोटी बराबर पकती रही। मैं तंग आ गया, हजरत निजामुद्दीन कह रहे हैं, मैं तंग आ गया और इस खुश आरजू में रहा कि कब अम्मी ये फरमाएं कि आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। ऐसा मिजाज बन गया बचपन। आखिर को वो गल्ला खाना ख़त्म हुआ और वालदा ने फरमाया कि आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। आजा फरमाते हैं, सुनकर मुझे ऐसी खुशी हुई कि बयान नहीं कर सकता। ख्वाजा निज़ामुद्दीन की ज़िंदगी फ़ख्र व फ़ाका आखिर तक रही। मौलाना अबुल हसन अली नदवी दामत बरकातहुम फरमाते हैं कि ख्वाजा साहब ने दिल्ली में रहना शुरू किया, बावजूद ये कि सारे हिंदुस्तान की दौलत और ज़रो जवाहिर दिल्ली उमंड उमंड कर आ रहे थे, सारे मुल्क की दौलत दिल्ली आ रही थी, और सस्ती चीज़ों का बहुत आलम था कि थोड़े से पैसे में 2 सेर मैदे की पकी पकाई रोटियां मिल जाती थीं और एक मन खरबूजा आ जाता था, इतने फ्रूट इतनी ज़रा से पैसों में आ जाता था। लेकिन हमारे पास एक दांग भी नहीं होता था, एक छोटा सा सिक्का भी नहीं होता था कि रोटियां खरीद कर खाऊं और वालदा और बहनों और घर के लोगों को खिलाऊं, और पूरी पूरी फसल गुजर जाती और फल खरबूजा चखना नसीब नहीं होता। लेकिन अपने हाल में खुश रहता और आरजू करता कि जितनी फसल बाकी है वो भी गुजर जाए और मैं इसी हाल में। जो बुजुर्गों के हालात पढ़ते हैं उनके भी ऐसे ही हाथ पांव होते हैं और आँख कान होते हैं, लेकिन फर्क इन चीज़ों में होता। हमारे पास जेब में भी है, बैंक में भी है, और भी जगह है, कोई मसला नहीं है, 50ों हैं, 1000ों हैं, और फिर भी परेशान, फिर भी परेशान। और वो होने से परेशान होते थे चीज़ों, नहीं होने से खुश होते थे। तो अल्लाह वाले औलिया अल्लाह पे नज़र रखते हैं, जो अल्लाह के ख़जाने में है कि वहाँ से अल्लाह पाक हमें देंगे, अल्लाह पाक खिलाएंगे, अल्लाह पाक हमें अता फरमाएंगे। कोई मुश्किल या तंगी मांगनी नहीं है, लेकिन कोई आ जाए बगैर मांगे तो आदमी थोड़ा सा सब्र कर ले, थोड़ा सा सब्र कर ले, अल्लाह पाक फिर उसके बाद बरकतों के ख़जाने अल्लाह पाक खोलेंगे। आज के सबक में असल कुछ अहादीस शरीफ और वाकयात पढ़ने हैं कि हमारे आपस के ताल्लुकात घरों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, मस्जिदों में, हमारे अपने महल्ले में आपस के ताल्लुकात खुशगवार हों, लोग आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे को वैल्यू हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो, और माशरे में जितनी लड़ाई झगड़े लगाई बुझाई परेशानियाँ ये डांट डपट और ये चीज़ें चल रही हैं ये ख़त्म हो। ये बहुत अहम सबक है, इसको याद भी करें और इसको फैलाएं और इसको अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक क़यामत के दिन अल्लाह ताला के कुछ बंदे अल्लाह के हमनशीन होंगे, अर्श के दाएं जानिब होंगे और अल्लाह के दोनों हाथ दाहिने ही हैं। वो नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे, उनके चेहरे नूर के होंगे, ना वो अंबिया होंगे, ना शुहदा, ना सिद्दीकीन। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया, वो लोग होंगे जो अल्लाह की अजमत और जलाल की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत रखते थे, अल्लाह की अजमत की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत रखते थे। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी की 3 बेटियां हो, कि घर में 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो या 2 बेटियां हो 2 बहनें हो, वो उनके साथ अच्छा मामला रखे और उनके हुकूक के बारे में अल्लाह से डरे तो उसके लिए जन्नत है। बेटियों की परवरिश, खानदान की औरतों की हिफाजत परवरिश, उसका बहुत अजर है, जन्नत का वादा किया गया। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दूसरे को हदिया दिया करो, यानी तोहफा। हदिया दिलों की रंजिश को दूर करता है। कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन के हदिये को छोटा और हकीर ना समझे, अगरचा वो बकरी के खुर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। बकरी के हाथ के आखिरी हिस्से के कोई ज़रा सा कोई टुकड़ा भेज दिया कि ये ले लीजिए, तो उसको भी छोटा ना समझे कि ये कोई कम ये भेजने की चीज़ है। अबू जर रदी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई थोड़ी सी नेकी को भी मामूली ना समझे। अगर कोई दूसरी नेकी ना हो सके तो ये भी नेकी है कि अपने भाई के साथ खंदा पेशानी से मिल लिया करे, अच्छे अच्छे शक्ल के साथ और नरमी के साथ खुश अखलाकी से मिल ले। और पकाने की गर्ज से जब गोश्त खरीदो या सालन की हांडी पकाओ तो शोरबा बढ़ा दिया करो और उसमें से कुछ निकाल कर अपने पड़ोसी को दे दिया करो, कुछ निकाल कर पड़ोसी को दे दिया। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौन है जो मुझसे ये बातें सीखे फिर उन पर अमल करे, या उन लोगों को सिखाए जो उन पर अमल करें। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मैं तैयार हूँ। अभी कंडीशन सुनी नहीं है, बात सुनी नहीं, जब भी कोई ऐलान होता तो सहाबा तैयार हो जाते, हम तैयार। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़राए शफ़त मेरा हाथ अपने दस्ते मुबारक में ले लिया और गिनकर 5 बातें इरशाद फरमाई, हराम से बचो तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे, और अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है उस पर राजी रहो तुम सबसे बड़े गनी बन जाओगे, सबसे बड़े मालदार हो जाओगे, अल्लाह ने जो दिया उस पर राजी हो जाओ। अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो तुम मोमिन बन जाओगे, और अपने लिए जो पसंद करते हो दूसरों के लिए भी वही पसंद करो तुम कामिल मुसलमान बन जाओगे, और ज्यादा हंसा ना करो क्योंकि ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। आयशा रदी अल्लाह अन्हा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सोया तो मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में हूँ, मैंने वहाँ कुरान पढ़ने वाले की आवाज़ सुनी, जन्नत में कुरान पढ़ने वाले की आवाज़ सुनी, तो मैंने पूछा कौन है जो जन्नत में कुरान पढ़ रहा है। फरिश्तों ने बताया कि ये हारसा बिन नौमान है, कोई सहाबी, उनकी आवाज़ आ रही है, हारसा बिन नौमान है। उसके बाद आयशा रदी अल्लाह अन्हा से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकी ऐसी ही होती है, नेकी ऐसी ही होती है, यानी नेकी का फल ऐसा ही होता है। और वो साहब हारसा बिन नोमान अपनी वालदा के साथ बहुत ही अच्छा सलूक करने वाले थे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में उनको आवाज़ आ रही है कि सहाबी वहाँ बैठ के कुरान पढ़ रहे, ऐसा दर्जा मिला। आयशा रदी अल्लाह अन्हा से रवायत है, मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके शौहर का है। मैंने दरियाफ़्त किया कि मर्द पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी माँ का है, मर्द पर सबसे ज़्यादा हक़ माँ का। अबू उमामा रदी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकियों का करना बुरी मौत से बचा लेता है, छुप कर सदका देना अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है, और सिला रहमी यानी रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना उम्र को बढ़ा देता है। नेकियों का करना बुरी मौत से बचा लेता है, छुप कर सदका देना अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है, और सिला रहमी यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना उम्र को बढ़ा देता है। अभी कुछ हदीसें और पढ़ी जाएंगी, दरमियान में एक सबक जो हमारे अपने इसलाह के वास्ते है कि हम अपने दिलों को, अपने नफ्स को टटोलें और देखें कि कहीं हमारे ज़िंदगी में कोई खामी तो नहीं। बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं उनसे तंगी हो जाती है, अल्लाह पाक कोई पकड़ फरमाते हैं ज़िंदगी में, कभी तंगी हो जाती है, आदमी अपना जायज़ा ले, मैंने तौबा कर ली है, अपने दिल को साफ़ कर लिया है। आदमी अपने बदन और जिस्म के लिए कितना एहतमाम करता है, एक फ़ानी जिस्म है जो अभी ख़त्म हो जाएगा, कब्र में चला जाएगा, ख़त्म हो गया जिस्म, लेकिन उसके लिए कितना इंतज़ाम है कि 3 वक्त खाना है, पानी है, चाय है, नाश्ता है, फ्रूट है, दवाएं हैं, तहारत, नहाना धोना, वर्जिश, तफरी, क्या क्या नहीं करता। आँख, कान, हड्डियाँ, हर चीज़ का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर अलग है। आँख का डॉक्टर अलग है, कान का अलग है, दांत का अलग है, और डॉक्टर हकीम हर हर एक का अलग अलग है। लेकिन दिल की बाज़ बीमारियां ऐसी हैं जिनका जो बहुत ख़तरनाक हैं, और बाज़ दफ़ा तवज्जो नहीं होती, मालूम ही नहीं होता। हसद, ये दिल की बीमारी है, नज़र नहीं आती, कोई अल्ट्रासाउंड एक्सरे लेके मालूम नहीं हो सकता, अगर मालूम करना मुझे हसद है कि नहीं, नहीं मालूम हो सकता। लेकिन हसद का नुकसान क्या है कि नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। किबर, बड़ाई अपनी किसी के दिल में हो तो वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अपनी बड़ाई, अपने कारनामे, फ़ख्र गुरूर के दावे, दूसरों से मुकाबला, दूसरों की अबजोई, नाज, शेखी मारना, इतराना, दूसरे को छोटे समझना, नाम व नमूद, हुब्बे जा, ये सारे अब उसकी एक्सप्लेनेशन है जो बातचीत में आदमी के तर्ज से जब दूसरे का जिक्र करता है तो कैसे करता है तो जाहिर हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों से आदमी अब दिल का इलाज करे। जो आदमी दुनिया की मोहब्बत को आखरत पर गालिब कर दिया, दुनिया की मोहब्बत में खो गया, अब वो इंसान आसमानों में जलील समझा जाता है, मिट्टी के खिलौनों में, खेल कूद में गाफिल है बच्चों की तरह, और दुनिया उससे एक दिन छूट जाएगी और आखरत के काम का रहा नहीं, दोनों तरफ से नुकसान में है, और समझता है कि मैं बहुत काबिल हूँ, मेरी समझ बहुत ऊँची है, और लोग मुझको अच्छा समझें, नाम व नमूद की ख्वाहिश, दीनदारी की शोहरत हो, दीनदारी की शोहरत हो, शैतान यहाँ से बहकाता है। मखलूक की खुशामद और लालच में लगा हुआ है, लोग अच्छा समझें अरे यहाँ कैसे पहुँचे, और लोगों से कीना पैदा हो गया, गुस्सा, इंतकाम का जज्बा, फलां को कोई बुराई पहुँचे, वो ख़राब हो, उसके ऐसा हो, नुकसान पहुँचे, गीबत हो गई, जबान फिसल गई, शिकायतें हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। अब ये होता है माशरे में जगह जगह, ये कहाँ से आया है? दिल की बीमारियाँ फिर जबान में आ गई, हाथ पैर में आ गई, बदगुमानी है किसी को किसी से, दूसरे के बारे में हमेशा उल्टा ही सोचता है, बदगुमानी कहते हैं। तो उस पर आखरत में मुकदमा होगा कि हमारे बंदे के बारे में गलत ख्याल क्यों किया। दूसरे से खुशगुमानी रखनी चाहिए, बहुत अच्छा आदमी है, ज़बरदस्त है, नेकियों वाला, अपने नफ्स पे बदगुमान रहना चाहिए, मुझे अपना पति नेकियों की मीज़ान में कैसा निकलूंगा, अल्लाह अकबर। जो आदमी हर वक्त मखलूक की याद में लगा हुआ है, फलां साहब अच्छे नहीं है, फलां साहब अच्छे हैं, दूसरों की याद में लगा हुआ है, फोन पे घंटों बातें हो रही दूसरों के बारे में, तो वो आदमी अल्लाह की याद में कब लगेगा? हर वक्त दूसरों की बातें। तो दुनिया की उम्र फर्ज करो कि दुनिया की उम्र 5,000 साल है, 10,000 साल है, और आखरत का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। तो भाई जरा दिन के एक हिस्से में, 1/5 में, 1/10 में, दिन का एक हिस्सा सबर कर लो, आखिरत में सब मालूम हो जाएगा कौन कैसा है क्या। तो होता यह है कि आदमी का दुश्मन कोई दूसरा आदमी नहीं है, बल्कि शैतान और नफ्स यही बहकाते हैं। शैतान और नफ्स बहकाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, झगड़ा डाल देते हैं। और इन चीज़ों में यहाँ पर हलाल हराम और गलत सही की बात नहीं हो रही, कि कोई मसला हो गया, कोई इख्तलाफ हो, मुश्किल हो गई, तो अब जाके प्रूफ कि तुम गलत हो, कि मैं गलत हूँ, मसला पूछो मुफ्ती साहब से, वो वाली बात नहीं है। बात वो तो देखा जाएगा बाद में, लेकिन होता यह है कि किसी एक आदमी को गुस्सा आ गया अगर कहीं पर, घर में, महल्ले में, खानदान में, तो उस वक्त चाहिए ये कि दूसरे लोग बर्दाश्त करें। सब एक साथ गुस्सा हो गया तो अब घर के घर खत्म हो जाते। उसकी मिसाल ऐसी है, सड़क पर गाड़ियां चलती हैं तो हमेशा एक दूसरे से समझ के, अंडरस्टैंडिंग से चलती हैं। एक गाड़ी बहुत स्पीड से जा रही है, लेन चेंज करती, कभी इधर आती उधर जाती, लहराती, तो अब क्या होगा? बाकी लोग ऐसा नहीं करेंगे, फौरन दुबक जाएंगे अपनी गाड़ी, बल्कि किनारे पे लगा देंगे, भाई इसको पहले जाने दें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत सारे हादसे होंगे। तो सड़क पर गाड़ियां हमेशा कोलैबोरेशन से चलती हैं। इसी तरह लोगों के आपस के ताल्लुकात, मीटिंग है, मजलिस है, मस्जिद में कोई मसला है, अगर कोई एक आदमी ज्यादा बोलेगा, गुस्सा करेगा कोई, वो दूसरा भी अगर बोला तो अब यहाँ मसला हो, बाकी लोग ऐसे दुबक जाएं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए घर में दो आदमी एक साथ गुस्से ना हो। एक तंग रास्ता है, छोटा सा है, छोटी सी जगह है, वहां से एक आदमी गुजर सकता है, दो आ गए एक वक्त में, अब क्या होगा भाई? आप रुक जाओ, दूसरे को जाने दो। जो आदमी झगड़ा छोड़ देगा उसको जन्नत का महल मिलेगा, झगड़ा छोड़ देगा जन्नत में का महल मिलेगा। तो इसमें यह नहीं कि सही कौन है, गलत कौन है, हलाल क्या है, हराम क्या है, यहाँ पे ये बात नहीं हो रही। मुफ्ती के पास जाएंगे वो तो यही कहेगा कि आप ठीक हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। बात ये हो रही थी कि उस वक्त जब मिजाज में तब्दीली हो गई तो एक आदमी दब जाए और दूसरा आदमी कहे कि भाई तुम्हारा ले लो, बात खत्म। किस्सा इकराम मुस्लिम से घर, खानदान, महल्ला सब जुड़ जाता है, लोगों में मोहब्बत हो जाती है। तो हमारी कामयाबी अपनी ख्वाहिश छोड़ने में है, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, आप कामयाब हो जाओ, आप जन्नत में चले जाओ, बस। तो दुनिया का झगड़ा ही खत्म हो गया। आदमी एक किस्सा सुनाते हैं, एक सहाबा के ज़माने में, ये माशरती ज़िंदगी के सुनहरे उसूल, मौलाना अब्दुल वाहिद साहब ने किस्सा लिखा कि इमाम नौवी रहमतुल्लाह अलैह ने तबरानी की हदीस में हजरत जरीर रहमतुल्लाह अलैह का वाकया नकल किया। उन्होंने अपने गुलाम को घोड़ा खरीद कर लाने के लिए कहा, अपने नौकर को कहा जाओ फलाने बाजार जाओ घोड़ा लेके आओ। वो घोड़ा लेकर आ गया, 300 में खरीद के लाया, 300 में खरीद कर लाया, और जिसको बेचने वाला था वो भी साथ में आया कि लाओ मेरे पैसे दो। तो जब हजरत जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने घोड़े को देखा तो मालिक से, बेचने वाले से पूछा कि मियाँ तुम्हारा घोड़ा 300 का नहीं है, 400 लोगे? उसने कहा आपकी खुशी। फिर फरमाया, फिर गौर से देखा, कहने लगे कि घोड़े की कीमत 400 से ज्यादा होनी चाहिए, क्या तुम 500 लोगे? उसने कहा कि आपकी खुशी, कीमत तो उतनी थी लेकिन आप ज्यादा दे दो। इस तरह एक एक 100 बढ़ाते रहे और बिलाखिर 800 में जाके वो घोड़ा खरीदा। 300 की चीज थी, 800 अपने इसरार से बार बार कह के उसको 800 का खरीदा। किसी ने अर्ज किया, हुजूर खरीदार तो चीज की कीमत कम कराया करता है, आपने उल्टी बात की कि 300 से 800 का कर दिया। फरमाया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की थी कि हर मुसलमान की खैरख्वाही किया करूंगा, ये घोड़ा अगर मेरा होता तो मैं 800 से कम में नहीं बेचता, अगर मेरा होता तो मैं 800 से कम में नहीं बेचता। तो इसलिए उसका तकाजा था कि अब कोई और बेच रहा है तो 800 से कम में ना बेचे मेरा भाई। इससे साबित होता है कि कितना वो अब दूसरे का ख्याल करते थे, कितना दूसरे का ख्याल करते थे कि दूसरा आदमी कामयाब हो जाए। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी अल्लाह पर और आखरत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि मेहमान का इकराम करे, और जो आदमी अल्लाह और आखरत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि सिला रहमी करे, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे, और जो आदमी अल्लाह और आखरत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि भलाई की बात करे वरना खामोश रहे, भलाई की बात करे वरना खामोश रहे। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखते थे और अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ रखते थे, इतनी बड़ी ऊंची शान के सहाबी, और एक आदमी अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु को बुरा भला कह रहा था, बुरी बुरी बातें सुना रहा था। अबू बकर मौजूद हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, और ये आदमी आगे बुरा भला कह रहा है अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु, इतने बड़े सहाबी। अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु चुप रहे, तो उनके सब्र करने और खामोश रहने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते रहे, खुश होते रहे, खुश। और जब उस आदमी ने बहुत ज्यादा बुरा भला कहा तो अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने कुछ बातों का जवाब दे दिया, पलट के उन्होंने भी कुछ कह दिया। इस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होके वहां से चले गए, नाराज होके उठ गए वहां से। अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु आपके पीछे पीछे पहुंचे और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक वो आदमी मुझको बुरा भला कह रहा था आप वहां तशरीफ फरमा थे और आप मुस्कुरा रहे थे, और जब मैंने जवाब दे दिया तो आप नाराज हो गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक तुम खामोश थे और सब्र कर रहे थे तुम्हारे साथ एक फरिश्ता था जो तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा था, और जब तुमने खुद उसकी बातों का जवाब दे दिया तो फरिश्ता चला गया और शैतान बीच में आ गया, और मैं शैतान के साथ नहीं बैठता लिहाजा मैं उठकर चल गया। असल बात ये हो रही थी, आलम गैब की चीज़ बताई कि वो आदमी बुरा भला कह रहा था, वहाँ एक फरिश्ता खड़ा होकर डिफेंड कर रहा था, नहीं भाई वो जवाब दे रहा था, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो रहे थे। और बाद में क्या हुआ, उन्होंने भी जवाब दे दिया तो फरिश्ता चला गया, शैतान आ गया। फरमाया कि अबू बकर तीन बातें हैं जो सब की सब बिल्कुल हक हैं, जिस बंदे पर कोई जुल्म और ज्यादती की जाए वो सिर्फ अल्लाह के लिए उसको माफ़ कर दे और इंतकाम ना ले तो बदले में अल्लाह ताला उसकी मदद करके उसको मजबूत कर देते हैं, और जो आदमी सिला रहमी के लिए देने का दरवाज़ा खोलता है अल्लाह ताला उसके बदले उसको बहुत ज़्यादा देते हैं, और जो शख्स दौलत बढ़ाने के लिए सवाल का दरवाज़ा खोलता है अल्लाह ताला उसकी दौलत को और भी कम कर देते हैं। आदमी की आम अकल में तो दूसरी बात होगी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं जो आदमी देने का दरवाज़ा खोलता है अल्लाह ताला उसके बदले उसको बहुत ज़्यादा दे देते, और जो आदमी अपने दौलत बढ़ाने के लिए सवाल का दरवाज़ा खोलता है अल्लाह उसकी दौलत को और कम कर देता। दुनिया की थोड़ी सी जिंदगी है और उसमें सफ़र होता है, उसमें लोगों से मामलात पड़ते हैं, उसमें जहाँ पर भी आदमी रहे तो अब उसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए, जबान में, तर्ज अमल में, मिलने जुलने में, और समझ अगले आदमी को सारा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, अगला आदमी अल्लाह का वली और बहुत ज़बरदस्त, और अपने बारे में आदमी थोड़ा सा बदगुमान रहे कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। इस्लाम एक ऐसा ज़बरदस्त मज़हब है, उसने हर फरीक को, हर आदमी को दूसरे के हकूक बताए, फलाँ के हकूक, फलाँ के हकूक, फलाँ के हकूक, और आप अगर पूरा करेंगे तो आपको ये फ़ज़ाइल होंगे, आपको ये फ़ज़ाइल होंगे, आपको फ़ायदा होगा। तो ये घरों में बताया गया, यानी बीवी को कहा गया कि मर्द तुम्हारे ऊपर हाकिम है, उनकी फजीलत बताई गई, और मर्दों को कहा गया शौहर को कि अपनी बीवियों के साथ बहुत अच्छा सलूक करो, बिलमारूफ तरीके से रहो, आशिरुहुन्न बिलमारूफ। बच्चों को बताया गया कि जन्नत माओ के कदमों तले है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है, बच्चों को बताया गया, और पेरेंट्स को, वालदैन को बताया गया कि बच्चों की परवरिश करो, उनसे मोहब्बत करो तो ये सवाब होगा। छोटों को बताया गया कि बरकत बड़ों के साथ है, जितनी बड़ी उम्र का होगा उसकी बरकत होगी, ओल्ड गोल्ड है। और बड़ों को कहा गया खबरदार छोटों पे रहमत करो, शफकत करो, उनसे मेहरबानी करो। हर आदमी को दूसरे के फ़ायदे बताए जा रहे हैं, दूसरे के फ़ायदे बताए जा रहे हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह पाक फरमाते हैं, वलकद करमना बनी आदम, हमने बनी आदम को इज्जत दी। एक जगह फरमाया वकूलु लिन्नासे हुस्ना, लोगों से खुश कलामी के साथ बातचीत करो। एक जगह फरमाया ला यस्खर कौमुम मिन कौम, कोई गुरोह और कौम, कोई मर्द दूसरे मर्दों का मजाक ना उड़ाए, اسی طرح فرمائے کوئی عورت دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے. اب یہ اتنے فضائل مسلمان کی عزت کعبہ شریف سے زیادہ ہے. مختلف احادیث ہیں ان میں یہ مضمون آئے ہیں, مختصر طور سے عرض کرتا ہوں کہ مسلمان کی عزت کعبہ شریف سے زیادہ ہے. مسلمان کی مدد کو چلنا 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے. بیمار کی عیادت کرنا 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں. مسلمان سے ملاقات کے لیے کوئی جائے تو جنت کا محل مل جاتا ہے. مسلمان کو سلام کرنے سے ہی 30 نیکیاں مل جاتی ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کوئی اچھے طرح خوش کلامی سے, اسمائلنگ فیس اچھی طرح ملے تو وہ بھی ایک صدقہ ہے. اور مسافہ ہاتھ ملایا تو گناہ معاف ہو گئے. کوئی بیوہ مسکین کی خبرگیری کو گیا تو ایسا ہے کہ رات بھر نماز پڑھتا رہا ہو اور دن بھر روزہ رکھتا رہا ہو, ہمیشہ یعنی قیام اللیل بھی کرتا ہے, روزے پہ روزے رکھتا ہے, اتنا ثواب ملے گا اگر کوئی بیوہ مسکین کی خبرگیری کو چلا گیا. والدین کو نظر رحمت سے دیکھا, 1 حج اور عمرے کا ثواب. گھر میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو محبت سے دیکھتے ہیں تو اللہ پاک دونوں کو رحمت اور محبت سے دیکھتے ہیں, کتنا بڑا ثواب. مسلمان کے لیے جو دعا کرے گا فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا, اللہ اس کو بھی دیجیے. اتنا فضائل ہیں کہ حتیٰ کہ مسلمان کا انتقال ہو گیا, اس کے اپنے عمل اعمال نامہ بند ہو گیا, لیکن جاتے جاتے بھی آپ کے لیے وہ نیکیوں کا پہاڑ ہے. نماز جنازہ پڑھیں گے, 1 نیکیوں کا پہاڑ, 1 قیراط ثواب ملے گا. تو جنازے کو لے کر جائیں گے قبرستان تو 1 اور قیراط, 1 پہاڑ کا ثواب ملے گا. جاتے جاتے بھی دنیا سے آپ کے لیے نیکیوں کا پہاڑ ہے. تو مسلمان کو ایسا سمجھنا چاہیے. اور جو آدمی مسلمان کے عیب کے پیچھے پڑے گا, اس کے کوئی برائی ڈھونڈے گا تو اللہ پاک اس کو رسوا کر دیں گے. جو آدمی مسلمان کا حق دبا لے گا قیامت میں مقبول نیکیاں دینی پڑیں گی. کوئی آدمی مسلمان سے 1 سال بات چیت بند کر دے, اب کے ہمیں کسی رشتہ دار سے فلاں سے ہماری بنتی نہیں ہے, آنا جانا بند, بات چیت بند, 1 سال بات چیت بند کر لی, اتنا ہی گناہ ہوگا جیسا کہ اس کو پکڑ کے مار ہی ڈالا آپ نے, آپ نے اس کو قتل کر دیا, اتنا گناہ ہوگا. 1 سال بات چیت بند کر لی. اور مسلمان کی دل آزاری کرنا بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹ, غیبت, چغلی, بہتان, لڑائی جھگڑا, دل کی آفتیں, حسد, جلن, تکبر. اس کیا ہوا کہ اعمال برباد ہو جاتے ہیں. نیکیاں کی, ذکر کیے, درود پڑھے, لیکن کسی سے معاملہ درست نہیں ہے. اب سب نیکیاں جو ہے وہ قیامت میں آ کر وہ کہے گا اللہ اس نے مجھے ایسا کہا, اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں. تو جب بات یہ ہے کہ جس مسلمان کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں, جس کے نام بھی معلوم نہیں ہے, لیکن اس کے اتنے فضائل بیان ہو رہے ہیں کہ اس کی عزت کعبہ سے بھی زیادہ ہے, اس کی مدد کرنے کو 10 سال کا اعتکاف کا ثواب ہے, وغیرہ وغیرہ, جس مسلمان کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. تو جن کو جانتے ہیں, جن کے ساتھ رہتے ہیں, جو پڑوس ہیں, جو مسجد میں ہیں, جو گھر میں ہیں, جو اپنے رشتہ دار ہیں, ان کے فضائل کتنے زیادہ ہوں گے. یعنی ہر آدمی ہیرا ہے, ڈائمنڈ, روبی. تو اگر چھوٹی موٹی کوئی بات ہو گئی, کوئی گناہگار بھی ہو گیا, لیکن اس سے نفرت نہ ہو, نفرت نہ ہو, تو اللہ پاک سے دعا کی جائے اور اس کو دعا دی جائے, اللہ آپ کی مغفرت فرمائے, اللہ جنت میں لے جائے, اللہ مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے. ہر آدمی کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ہے, یہ ہمارے دین کی ایک حصہ ہے کہ ہر آدمی کے بارے میں اچھی بات سوچے, بہت اچھے آدمی ماشاء اللہ, بہت اچھے. جو آدمی توڑے رشتہ داری اس سے جا کر جوڑو. جو آدمی سلام نہ کرے اس کو سلام کرو. جو آدمی تحفہ نہ دے اس کو جا کر تحفہ دو, حتیٰ کہ کوئی آدمی دشمنی کرے تو اس کو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی آدمی نے خوب بری بری باتیں سنائی. امام صاحب نے ایک تشت میں, ایک بڑے برتن میں, یعنی بہت سارے کہتے ہیں کہ درہم چاندی یا کچھ پیسے رکھ کر اس کو بھیج دی, یہ لو تم نے ہمیں اپنی نیکیاں دے دی ساری, ہم کچھ تمہارا دنیا کا فائدہ کر دیں, یہ لے لو. ایک آدمی امام صاحب کو بہت برا بھلا کہہ رہا تھا مسجد میں. امام صاحب نے لوگوں کو روک دیا, ابھی کہنے دو, کوئی بات نہیں. پھر وہ اٹھ کے گھر کی طرف چلے, باہر آئے سڑک پر, وہ آدمی پیچھے پیچھے بکتا 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 آ رہا ہے, کوئی بات نہیں, آنے دو آنے دو, کوئی بات نہیں, کوئی جواب نہیں دیا. گھر تک آ گئے, وہ آدمی اپنا بکتا بکتا الٹا سیدھا کہتا ہوا چلا آ رہا ہے پیچھے. بالکل جب گھر آ گیا تو امام صاحب نے کہا, دیکھو بھائی میرا گھر آ گیا ہے, اب میں چلا جاؤں گا اندر تو تمہارا, تم کو تسلی نہیں ہوگی, اس لیے میں یہیں کھڑا رہتا ہوں, تم کو جتنا اور کچھ کہنا ہے کہہ لو, اب آگے تو جا نہیں سکتا, جب تم پورا کر لو گے پھر میں گھر چلا جاؤں گا, جب بات پوری ہو جائے تمہاری تو اس کے بعد گھر چلا جاؤں گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے اور एक आदमी उनसे छुप रहा था, रास्ते में देखा कि एक जानने वाला आदमी है और छुप रहा है, कहीं सामने नहीं आता, मुलाकात नहीं करता। तो इमाम साहब ने मालूम किया, भाई क्या बात है। मालूम हुआ कि उस आदमी को इमाम साहब ने कुछ कर्ज दिया था जो उस पर ड्यू था, और उसके बेचारे के पास था नहीं कि वापस करे, और डेडलाइन आ गई थी, तो अब वो छुपता फिर रहा था। इमाम साहब ने कहा, ऐसी क्या बात, एक मुसलमान है मुझसे छुप रहा है, सिर्फ इतनी सी बात पर जरा सा कि दो टुकड़े कोई उसकी कोई चीज उधर ड्यू है। इमाम साहब ने कहा कि भाई मैं अपना कर्ज तुम्हें माफ कर दूँ, तुम मुझसे छुपो नहीं, आओ सलाम दुआ करो, बातचीत करो, छुपो नहीं। और फरमाया कि इस छुपने छुपन छुपाई के नतीजे में तुम्हें जो तकलीफ हुई मेरी वजह से, उस पर मुझे माफ कर दो। अर्ज भी माफ किया, और उस आदमी के दिल को जो तकलीफ पहुंची कि मैं छुपू जरा इमाम साहब से, उन्होंने इस पर भी तुम मुझे माफ करो कि मैंने मेरी गलती है। ये चीज यानी मस्जिद वगैरह में अर्ज करते हैं, साथियों ने सुना होगा, लेकिन फोन पर जो है लोग हैं उनके फायदे के लिए बताता हूँ कि दुकान में एक ग्राहक आ गया, कस्टमर, और उसने कहा सौदा खरीदना है। दुकानदार ने कहा कि सौदा बहुत अच्छा है और ज़बरदस्त है, डिस्काउंट पर भी दूंगा और गारंटी भी होगी, माल बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरी दुकान से सौदा मत खरीदिए। कस्टमर ने कहा ऐसी क्या बात है, कहने लगे कि बराबर में मेरे पड़ोसी भाई की दुकान है, उससे सौदा खरीद लीजिए, मुझसे मत लीजिए। ऐसा क्यों, तो कहते हैं कि आज मेरी बहुत बिक्री हुई, बहुत सेल हुई, लेकिन मेरे भाई के दुकान में कोई आदमी नहीं आया, सुबह से भूखा है, तो उसकी दुकान से ले ली। तो ये होता है, यानी ऐसी चीज़ें जब आम सड़क पर लोगों में ऐसी सिफात आ जाएं, तो पूरी दुनिया इस्लाम में दाखिल हो जाएगी। तो इन सिफात को हासिल करने की ज़रूरत है। मस्जिद में कोई आदमी आ गया और बहुत सवेरे आया है जुमे के लिए, और पार्किंग में बिल्कुल आखिर में पार्क करके 10 मिनट पैदल आ रहा है। लोगों ने कहा अरे बेवकूफ़, तुम आए हो सबसे पहले, बिल्कुल सामने पार्क करो। तो उन्होंने कहा बेवकूफ़ मैं हूँ या तुम हो, बात नहीं समझे, जो आदमी बिल्कुल आखिर में आएगा, आखिरी वक्त में, उसको ज़रूरत होगी कि नमाज छूट रही है, मैं जल्दी सामने पार्क करके जल्दी से जाऊँ, मेरे पास तो टाइम है, मैं आराम से दूर पार्क करके आ सकता हूँ, तो बेवकूफ़ मैं हूँ कि तुम। तो भाई ऐसी सोच, ऐसी सोच, एक मुल्क में जहाँ ये तो वाकई ऐसा है, बिल्कुल यानी दुनिया का सारा फसाद जो है, चाहे मस्जिद में हो, घर में हो, महल्ले में हो, दुनिया में हो, शहरों में हो, बुजुर्गान उसको एक जुमले में बताते हैं कि दुनिया का सारा फसाद सेल्फिश रीज़न की वजह से होता है। मैं, मेरा, मुझे, मेरा फ़ायदा, दूसरे को नुकसान हो, दूसरा जाए भाड़। दुनिया का सारा फसाद जो है, चाहे किसी भी लेवल पर हो, वो अपनी खुद गर्ज अकल की वजह से होता है, और उसका इलाज यह है कि आदमी सेल्फ लेस हो जाए, मेरी कोई ख्वाहिश ही नहीं, आप कामयाब हो जाओ, आप जन्नत में चले जाओ। उसके यानी हर जमाने में ऐसी ऐसी उसकी मिसालें होती हैं, दो चार एक मिसाल एक आध बताकर और उसको किस्सा ख़त्म करते हैं, और फिर उसके बाद बात होगी। इंडिया में किस्सा है ये कि एक आदमी, घर है, फैमिली है, सब अच्छे लोग हैं, एक आदमी को किसी तवायफ से नाजायज ताल्लुक हो गया, किसी तवायफ से उसको, किसी, अल्लाह बचाए, उसको ताल्लुक हो गया, वहाँ जाया करता था, और घर वाले इतने नेक, एतादशार, फरमा बरदार कि वहाँ से फरमाइशें आया करती थी तवायफ के यहाँ से मियाँ को कि आज बिरयानी पका के लाओ, आज फला पका के लाओ, कोरमा पका के लाओ, तो घर में आके कहता था कि आज ये पका के दो, और वो लेकर जाया करता था। और उसकी बीवी इतने सब्र से उसको सारा खाना पका के और उसको जो है हाथ में दे के दिया करती थी, अच्छा जा। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये किस गफलत में पड़ा हुआ है, और ऐसी चीज़ के यानी गलत चीज़ में, लेकिन देखो घर वालों का इकराम और तवज्जो, कि जिस ज़माने में ये तौबा करेगा और वापस आएगा तो उसको अपनी बीवी की कितनी कदर होगी, अपनी बीवी की कितनी कदर होगी कि वो अपने दिल पे पत्थर रख के उसके यानी हिदायत के वास्ते और उसकी अभी भी फरमाबरदारी। एक बुजुर्ग थे, एक शेख, उनको किसी ने शरारत से बुलाया, आपकी दावत है, मेरे घर पे आइए। तो बुजुर्ग पहुंचे, असला तय करके घर पर आए, तो उसने दरवाजे से कह दिया नहीं, वो तो मैंने ऐसी झूठ बोला था, दावत नहीं है आपकी, दावत नहीं है आज।
उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वापस चले गए। जब वो वापस चले गए खास फासला, तो दौड़ कर आए पीछे, नहीं 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 है आज दावत है, किसी को दौड़ाया आप आ जाइए। उन्होंने कहा ठीक है, वहीं से वापस मोड़े सवारी वापस आ गए। जब दरवाजे पर आए तो उन्होंने फिर किसी से कहलवाया कि नहीं आज दावत नहीं है, आप तशरीफ ले जाइए वापस। कई दफा ऐसा हुआ वो जब आते तो कहता आज खाना नहीं है, आज आज दावत नहीं, जाइए। जब वो दूर चले जाते तो दौड़ाता किसी आदमी को, नहीं आज ही है दावत, जरूर तशरीफ लाई, गलती हो गई। तो वह फिर आ जाते। फिर उसने फरमाया, उसने पूछा कि हम तो आपको आजमा रहे थे कि आपके अखलाक कैसे हैं, आपके मैनर्स कैसे हैं। तो बुजुर्ग ने कहा कि ये जो तुमने देखा ये तो कोई अखलाक नहीं है, ये तो कुत्ते के अखलाक हैं कि जब उसको रोटी दिखाओ तो आ जाता है, जब डंडा दिखाओ तो भाग जाता है। तो मैंने जो बात दिखाई वो तो मैं यानी इतना ऊंचा हुआ, कितना ऊंचा हुआ कि कुत्ते के बराबर मेरे अखलाक हो गए। तो बुजुर्गान ऐसा अपना इलाज करते हैं, सेल्फलेस काम किया उसके बाद सेल्फलेस। बुजुर्ग फरमाते थे कि मस्जिद में ऐलान हो कि जो आदमी सबसे बुरा और खराब आदमी है बाहर निकल जाए मस्जिद से, मिंबर पर ऐलान हुआ, वो कहने लगे सबसे पहले मैं निकलूंगा बाहर, सबसे पहले, क्योंकि मेरे जैसा गंदा और खराब आदमी कोई है ही नहीं दुनिया में, सबसे पहले मैं निकल जाऊँ। लोग एक बुजुर्ग के पास आए शिकायत करने कि हजरत शहर में बारिश नहीं हो रही। उन्होंने कहा मेरे गुनाहों की वजह से नहीं हो रही, मैं फौरन शहर से चला जाता हूँ, शायद फिर बारिश हो। ऐसा अपने आप को अपने नफ्स को कंट्रोल करते थे। नेकी कर दरिया में डाल, आदमी खूब इबादत सदका नेकी काम खिदमत खल्क करे, फिर डरता रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि कबूल ना हो। अपने आप को बहुत नेक पाकीज़ा साहिब कमाल पहुँचे हुए मासूम शरीफ मेरे जैसा कोई नहीं ऐसा मत समझिए, हरगिज़ मत समझिए, वरना शैतान वहीं से गिरा देगा, मार डालेगा, शैतान मार डालेगा और नेकियां बर्बाद, गुनाह लाजिम हो जाएगा। अल्लाह का खूब शुक्र कीजिए, जो नेकी है अल्लाह की तौफीक से है, अल्लाह ने दी जिंदगी अल्लाह की दी हुई, तरीक़ा सलीका माल असबाब सेहत ताकत सब अल्लाह का दिया हुआ, मुझसे काम करवा लिया और सवाब भी दे दिया तो मेरा क्या कमाल, मेरा क्या कमाल। मोमिन फलदार दरख्त की तरह हो जाए, दरख्त है उसके ऊपर फल है, क्या होता है लोग आके उसको डंडे मारते पत्थर मारते, जिस दरख्त पर ज्यादा फल होंगे उसको ज्यादा पत्थर मारेंगे। अब दरख्त क्या करता है, जवाब में पत्थर नहीं मारता, फल देता है, लो भाई 5 किलो फ्रूट सेब आम खाओ खाओ। तो आदमी अपने अखलाक में और डीलिंग में फलदार दरख्त की तरह हो जाए, ये मिसाल दी जाती है। और मोमिन का सब्र बर्दाश्त, अब देखें हालात आते हैं, मुश्किलात आती हैं जिंदगी में, बीमारी है तंगी है परेशानी है, आदमी उससे कैसे डील करे। तो मोमिन का सब्र और बर्दाश्त ऐसा हो जाए जैसे दरख्त होता है, दरख्त का तना या स्टेम, एक पुराना दरख्त है खड़ा हुआ है मोटा, उसका जो है उसकी जड़ है। फॉल का सीजन आया, खजां का मौसम आया, क्या हुआ सारे पत्ते झड़ गए, बेचारे के जितनी फूल थी खुशबू आती थी सारे फूल चले गए, जितने फल थे सब लोग तोड़ के ले गए। और उसके बाद क्या हुआ कि अब उसका ख्याल भी नहीं करते, पानी भी नहीं डालते, कहते बेकार हो गया, दरख्त बेचारा खड़ा हुआ है, सर्दी है तूफान है आंधी है बारिश है टेम्परेचर फ्रीजिंग है, दरख्त बेचारा अकेला खड़ा हुआ, एक अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा, कुछ भी नहीं उसके ऊपर, सिर्फ अभी कुछ शाखें और एक तना एक लकड़ी का टुकड़ा खड़ा हुआ, लेकिन दरख्त इस उम्मीद पे खड़ा हुआ है और हवाएं चल रही हैं उसको, लेकिन कोई हिला नहीं सकता, वो खड़ा हुआ है इस उम्मीद पे है कि भैया ये टाइम गुजर ही जाएगा, चंद हफ्ते महीने फिर तो आएगी बाहर, फिर आएगी सूरज की रोशनी और बारिश होगी पानी अच्छा होगा फल फूल भी आ जाएंगे खुशबू भी आ जाएगी पत्ते भी आ जाएंगे हरा भरा भी हर चीज ठीक हो जाएगी। आदमी इससे सबक ले, जिंदगी में हालात आते हैं घरों में महल्ले में, लेकिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते, तो भाई 2-3 महीने की बात है, थोड़ी सी बात है, फिर उसके बाद बाहर आ जाएगी, सारे हालात ठीक हो जाएंगे, और सबर शुक्र इस्तिग़फ़ार और अल्लाह की पनाह मांगे। मोमिन सुराही बन जाए, सुराही होती है पानी की, जिसको पानी उसमें से निकाला जाता है, बहुत अच्छा मट्टी का बनाया जाता है, उसमें ठंडा पानी निकलता है, लेकिन सुराही क्या कहते हैं सुराही को फ्लैश, उसमें से पानी निकालने के लिए शर्त यह है कि उसको झुकाना पड़ता है, गर्दन झुकानी पड़ती है, सुराही को हर वक्त तवाज़ो से रहना पड़ता है, ह्यूमिलिटी, तब उसमें से कोई फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा। तो मोमिन की मिसाल ऐसी है कि सुरमा बन जाए, जो आंख में लगाया जाता है सुरमा, उसका किस्सा है कि सुरमा ने शिकायत की, सुरमे को क्या कहते हैं, सुरमे ने शिकायत की कि मुझे इतना ज्यादा क्यों पीसते हो, सिल पर रख के बट्टा पीस रहे हो पीस रहे हो पीस रहे हो, मुझे हर यानी सारी तंगी मुसीबत परेशानी मेरे ही वास्ते, मुझे पकड़ के आप ग्राइंड कर रहे हो ग्राइंड कर रहे हो, आखिर मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हो। तो उसको बताया गया कि तुमको इतना इसलिए पीसा जा रहा है कि फिर तुम हर दिल अजीज हो जाओ, हर आदमी की आंख का तारा हो जाओ, तुमको नए दुल्हन भी लगाएंगे, हर आदमी भी बुजुर्ग भी हर आदमी अपनी आंख में रखेगा। पहले इतना पीसा गया कि उसके बाद फिर इतने रिवॉर्ड मिले। एक दिल्ली में एक सिख था और वो सुरमा बेचा करता था, खुद मुसलमान नहीं है, मार्केटिंग ऐसी करता था कि मुसलमानों के नबी की सुन्नत और ये सुरमा ले लो मेरा सुरमा, जो लगाएगा उसको मिलेगी जन्नत। खुद मुसलमान नहीं है, मार्केटिंग कर रहा है, खूब बेचता सुरमा ले लो सुन्नत है सुन्नत। अल्लाह, सहाबी मैदान जंग में आखिरी वक्त है, दुनिया से जा रहे हैं, मशहूर किस्सा है लेकिन याद दहानी के लिए सुना दिया जाता है कि जख्मी है और खून बह रहा है, आखिरी वक्त है, दुनिया से जा रहे हैं, प्यास लग रही है, अरे कोई पानी पिला दे। तो पानी वाला आया दौड़ के, लो भाई पानी। अब आप सोचो ऐसा इमरजेंसी टाइम है, पानी आया, लेकिन बराबर में एक दूसरा जख्मी है, उसने भी आवाज़ निकाली, आह आह, उसने भी आह निकाली। तो इन्होंने कहा नहीं मुझे पानी मत पिलाओ, पहले उसको पिला के आओ। दूसरे के पास पहुंचे, उसको पानी पिलाना शुरू किया, तो एक तीसरी आवाज़ आई कहीं से, अरे पानी पानी। तो उन्होंने कहा मुझे भी मत पिलाओ, पहले उसको पिलाओ। जब पानी वाला वहाँ पहुँचा तो तीसरे आदमी का इंतकाल हो गया, वापस आया दूसरे के पास, दूसरे का भी इंतकाल हो चुका, फिर दौड़ के पहले के पास आया कि उसी को बचा लूं, तो पहला वाला भी दुनिया से चला गया। सारे दुनिया से चले गए, प्यासे चले गए, और लेकिन पहले अपने दूसरे भाई का ख्याल किया कि उसको पहले दे। तो ये ऐसी सिफतें हैं, सारी कुर्बानी हमारी है और सारा सवाब आपका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल मेहनत की और उसके बाद 20-22 साल उसके बाद मक्का मुकरमा फतह हुआ। तो जिन लोगों ने सारी ज़िंदगी तकलीफ दी थी, अब वापस आए वहाँ, तो काबा शरीफ की चाबी आई, काबा शरीफ की चाबी आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको रख लेते, अपने ख़ानदान को दे देते, सहाबी को अपने रिश्तेदारों को दे देते, जिन्होंने सारी ज़िंदगी 20 साल मेहनत की दीन की। उन्होंने कहा नहीं, ये जिसकी चाबी पहले थी उसी को वापस, लो मियाँ ये तुम्हारी है वापस, तुमसे कोई नहीं लेगा। सारी मेहनत करके मक्का फतह करके काबा शरीफ की चाबी उसी को वापस दे दी जिसकी पहले थी, जिसके हाथ में, तुम ही ले लो। जब ज़कात का निज़ाम कायम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब माल आएगा पैसे आएंगे और गरीबों को तकसीम होंगे, उन्होंने फरमाया कि हमारे ख़ानदान का कोई गरीब आदमी ज़कात नहीं ले सकता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान को उससे अलग कर लिया कि हमारे ख़ानदान का कोई आदमी चाहे गरीब भी हो फ़कीर कोई हो ज़कात नहीं ले सकता। और जब दूसरी तरफ सूद का निज़ाम ख़त्म हुआ तो आप सबसे ज़्यादा नुकसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को हुआ, अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका सारा बिजनेस ख़त्म हो गया क्योंकि अब हुक्म आ गया कि अब सूद नहीं ले सकते। इससे जो बात सीखने की है वो ये है कि सारी क़ुरबानी आदमी खुद दे लेकिन किसी फायदे की उम्मीद ना रखे। तो घर खानदान महल्ला मुल्क सारी दुनिया जुड़ जाएगी, आपस में मोहब्बत हो जाएगी, आदमी सेल्फ लेस हो जाए, मेरी कोई ख्वाहिश ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो सारा झगड़ा हर लेवल पे सब हर बात ठीक हो जाएगी। तो अल्लाह पाक हमें दीन की समझ अता फरमाए, अल्लाह राज़ी हो जाएंगे तो अल्लाह पाक इतने देंगे आखरत में कि बंदे को खुश कर देंगे। आदमी अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले, तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, नेकियों की तरफ आ जाए, गलती हुई, कोई शर्मिंदगी हुई, दिल टूटा, डिप्रेशन हो गया, वापस आ जाए और अल्लाह पाक को राज़ी कर ले, नामा अमाल से गुनाह मिटा देंगे, फरिश्तों को भी भुला देंगे। और ऐसे करीम बादशाह हैं अल्लाह जो गुनाहों को नेकियों से बदलने पर कादिर हैं और गलती पर पर्दा डाल देते। एक बुज़ुर्ग तवाफ करते और दुआ करते कि अल्लाह मुझको मासूम बना दीजिए कि मुझे गुनाह ही ना हो, मासूम बना दीजिए कि गुनाह ही ना हो। उनको आवाज़ आई कि तुम तौबा की खिड़की से मेरे पास क्यों नहीं आ जाते, तौबा की खिड़की से आ जाओ, दूसरी खिड़की भी तो खुली रखी। तो हम जैसे भी हैं अल्लाह पाक की दरबार में तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, दुआ करें और अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करें। ये जो यहाँ तालीम और बातें बताई जाती हैं किसी और के लिए नहीं कि किसी और को देखें कि दूसरे में क्या खराबी है, अपने लिए कि हम अपने आप को दुरुस्त करें, अल्लाह के वली हो जाएं, अल्लाह पाक राज़ी हो जाएं और दुनिया में हयात तैयबा और आखरत में अमन चैन सुकून और जन्नतुल फिरदौस अल्लाह पाक हमें आपको सबको अता फरमा दें। दरूद शरीफ पढ़ के और इस्तिग़फ़ार करके दुआ मांगें अपने लिए भी उम्मत के लिए भी, और जो बातें सुनी हैं उनको दोहराएँ और कहीं और जाकर बताएँ तो बहुत उम्मत में लोगों को फ़ायदा होगा। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله يا رحمن يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا رحمن يا كريم اے اللہ آپ نے اپنی نعمتیں عطا فرمائی، اے اللہ آپ نے صحت طاقت دی، یا اللہ ہم سے نافرمانی ہو گئی، یا اللہ ہم ہر گناہ سے معافی چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں بخش دیجئے، اے اللہ جن گناہوں سے آپ کی ناراضگی ہوتی ہے، آپ کا غضب نازل ہوتا ہے اور جس کی نحوست سے عبادت سے محرومی ہو جاتی ہے، اے اللہ ہمارے ایسے گناہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہماری وجہ سے کوئی دوسرا آدمی گناہ میں مبتلا ہوا تو اس کو بھی معاف کر دیجئے، اے اللہ جس گناہ سے دنیا اور آخرت میں رسوائی بدنامی ہو جائے اے اللہ اس کو بھی معاف کر دیجئے، اے اللہ ہم نے مخلوق سے چھپ کر نافرمانیاں کی مگر آپ سے کہاں چھپ سکتے تھے، اے اللہ آپ نے پھر بھی پردہ ڈالا، آپ نے بدنامی سے بچا لیا، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں کہ جو گناہ اور غلطی کو دیکھتا ہو اور اس پر پردہ ڈال دیتا ہو، اے اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سے نافرمانی ہوئی مگر آپ نعمتوں پر نعمتیں دیتے رہے، اے اللہ آپ نے ہمیں اتنے اچھے حال میں رکھا جیسے اپنے محبوب بندے کو رکھتے ہیں، اے اللہ ہم سے پھر بھی غلطیاں ہو گئیں، اے اللہ اپنے فضل سے بخش دیجئے، اے اللہ ہم نے بار بار توبہ کی پھر شیطان کے جال میں آ گئے، اے اللہ ہم آپ سے کہاں چھپ سکتے ہیں، نہ کوئی مکان، نہ اندھیرا، نہ کوئی تدبیر، اے اللہ آپ چاہتے تو ہمارے اوپر کوئی نشان لگا دیتے مگر آپ نے نیک لوگوں کی طرح رکھا، لوگ اچھا سمجھتے رہے، اے اللہ ہمارے سب گناہوں کو صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم میں اور گناہوں میں اتنی دوری کر دیجئے جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو ایسا دھو دیجئے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے، اے اللہ ہم میں سے ہمیں جتنے ہمارے بھائی بہن بزرگان بڑے چھوٹے جو اس وقت سن رہے ہیں، اے اللہ ہم میں سے زندگی گزارنے کا جو بہترین طریقہ ہو سکتا ہے پاک صاف سنتوں والی زندگی، اے اللہ جس سے ہم آپ کے محبوب بندے بن جائیں، اے اللہ ہمیں وہ طریقہ سکھا دیجئے، وہ علم دے دیجئے، وہ عمل کی توفیق دے دیجئے، اس کا سلیقہ طریقہ سمجھ بوجھ دے دیجئے، اس پر عمل پر قائم کر دیجئے، اے اللہ ہر سانس آپ کی یاد ہو، اے اللہ نیکیوں کی طرف دوڑ ہو، اے اللہ گناہوں سے بچنا ہو، اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں اولیاء صدیقین انبیاء صالحین کی صفات عطا فرمائیے، اے اللہ زمانے کے حادثات سے بیماریوں سے پریشانیوں سے ہم کو امن میں رکھیے، اے اللہ دشمنوں اور حاسدوں سے محفوظ رکھیے، اے اللہ شیطان اور نفس سے محفوظ رکھیے، اے اللہ خوف ڈر اور وہم اور وسوسوں اور برے خوابوں سے یا اللہ ہمیں امن دیجیے، اے اللہ ہمارے جتنے بھائی بہن ان کے گھروں میں جن دلوں میں یا اللہ جتنی حاجات ہوں یا اللہ ان سب حاجات کو غیب سے پورا فرما دیجئے، اے اللہ ہر مسلمان کو دنیا آخرت کی خوبی عطا فرمائیے، اے اللہ امت کے خوف کو امن سے بدل دیجئے، اے اللہ امت کی بے عزتی کو عزت سے بدل دیجئے، اے اللہ امت کی پریشانی کو خوشی سے بدل دیجئے، اے اللہ پوری امت کو نیک پاکیزہ حلال رزق عطا فرمائیے، صحت تندرستی بہترین علم اخلاص اور تقوی عطا فرمائیے، اے اللہ ہر بری چیز سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے بڑوں کو چھوٹوں کو بچوں کو عورتوں کو مردوں کو یا اللہ سب کو بخش دیجئے، اے اللہ جن گھروں میں احوال ہیں کوئی بیماری پریشانی ہے اے اللہ غیب سے یا اللہ پریشانی کو دور فرما دیجئے، یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائیے، اے اللہ نیکیوں کے شوق ہمیں آخرت کا شوق عطا فرمائیے. اے اللہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے رشتہ دار آبا و اجداد، اے اللہ مرحومین کو جنت الفردوس عطا فرمائیے، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ قیامت میں ان کو اونچے درجات عطا فرمائیے. اے اللہ آپ کی جتنی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں کعبہ شریف پر، مساجد میں، اور رات کے آخری پہر میں، رمضان اور حج میں، اے اللہ وہ سب رحمتیں برکتیں ہمیں بھی عطا فرما دیجیے. اے اللہ دین کی خدمت کرنے، اے اللہ نیکیوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے گھروں میں، پڑوس میں، مسجدوں، محلوں میں، یا اللہ اطمینان، پیار، محبت کا ماحول عطا فرمائیے. اے اللہ دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے. اے اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلي واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.